नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। संसद के मानसून सत्र 2025 के तीसरे दिन बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार किए जा रहे नारेबाजी के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा निर्धारित की गई है, जिसके लिए 16 घंटे का समय निर्धारित की गई है। आज सुबह हुई कार्य मंत्रण समिति की बैठक में इसके लिए अलग से समय आवंटित करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वह ब्रिटेन के अपने समकक्ष कीर स्टार्मर के साथ चर्चा करेंगे और राजा चार्ल्स तृतीय से भेंट करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त विक्रम कुमार दोरई स्वामी ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों को पारस्परिक लाभ मिलने की उम्मीद है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे। युवा मामला और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश किया। विधेयक पेश करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि यह विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों और सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिक आचरण का प्रावधान करता है। श्री मांडविया ने निचले सदन में राष्ट्रीय डंपिंग रोधी विधेयक 2025 भी पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय डंपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन का प्रयास करता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा कल श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की। सोमवार को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्य सचिव मनीष कुमार ने आज प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी सुब्रमण्यम, योजना आयुक्त अंकुर गर्ग, बागवानी सचिव कोज रेनिया और प्रमुख हितधारकों के साथ अरुणाचल प्रदेश ऑर्किड मिशन के मसौदे पर प्रस्तुति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में मिशन के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने और सहयोग को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस पहल का उद्देश्य राज्यभर में ऑर्किड की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देकर अरुणाचल प्रदेश को विश्व की ऑर्किड राजधानी के रूप में स्थापित करना है। भारत का पहला 50 किलोवाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। यह 50 किलोवाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके 68 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान में बिजली का उत्पादन करेगा। अरुणाचल पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र के भूवैज्ञानिक रूपांकर राजखुआ ने कल इसकी घोषणा की। राजखुआ ने कहा कि इस परियोजना के 3 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने कल अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की 33वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के कृषि विपणन पारिस्थितिक तंत्र को नया रूप देने पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें बाजार संचालित उत्पादन सलाह, बाजार की जानकारी और सर्वेक्षणों को मजबूत करने, व्यापार की मात्रा बढ़ाने और व्यापक विपणन रोडमैप पर जोर दिया गया। ठोस अवशेष प्रबंधन और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध पर 4 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आज दोपहर तवांग जिले के ओल्ड मार्केट कम्युनिटी हॉल में शुरू हुआ। शहरी मामलों विभाग और तवांग जिला प्रशासन द्वारा मार्केट कल्याण सोसायटी, महिला कल्याण संघ और स्वच्छ तवांग टास्क फोर्स समिति के सहयोग से आयोजित इस पहल का उद्देश्य एक स्वच्छ और हरित तवांग का निर्माण करना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।